ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆದರಣೀಯ ಸನ್ಮಾನನೀಯ, ಮಿಠಿ ಮೃದುಲ್ ವಾಣಿ, ಶಾಂತಚಿತ್ತ ಸ್ವಭಾವ, ಕುಶಲ್ ಪ್ರಶಾಸನ್, ಐಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಬೆನ್ ಜಿ ಕಾ ಹಮ್ ತಹೆ ದಿಲ್ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಸಭಿ ಕೋ ಬಹುತ್ ದಿಲ್ ಕೆ ಗಹರಾಯಿ ಸೆ ನಯ ಸಾಲ್ ಕಿ ಬಹುತ್ 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 ಮುಬಾರಕ್ ಹೋ, ಮುಬಾರಕ್ ಹೋ. ಆಜ್ ಸೆ ನಯ ಸಾಲ್ ಶುರು ಹೋ ಜಾಯೆಗಾ. ದಿನ ಬದಲತೆ ರಹತೆ ಹೇ, ಮಾಸ ಬದಲತೆ ರಹತೆ ಹೇ, ಐಸೆ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ಸಾಲ್ ಪೂರಾ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ. ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ ಹಮೆ ಕುಛ್ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಲೇಕರ್ ದೃಢತಾಪೂರ್ವಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಕೆ ಕದಮ ಪರ್ ಕದಮ ರಕ್ತೆ ಹುಯೆ ಅಪ್ನಾ ಯೇ ಸಾಲ್ ವ್ಯತೀತ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಜಿಸ್ಸೆ ಫರಿಶ್ತಾ ಸ್ವರೂಪ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ಸಕೆ. ತೋ ಬಹುತ್ ಅವಶ್ಯಕ ವಿಷಯ ಹೇ ಯೇ ಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ನೆ ಜೈಸೆ ತ್ಯಾಗ ತಪಸ್ಯಾ ಸೇವಾ ಕಿ, ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಕೆ ಕದಮ ಪರ್ ಕದಮ ರಕ್ತೆ ಹುಯೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರ್ಕೆ ಫರಿಶ್ತಾ ಸ್ವರೂಪ ಕೋ ಕೈಸೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರೆ, ಈ ವಿಷಯ ಹೇ. ಔರ್ ಸನ್ಮಾನನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಬೆನ್ ಜಿ ಕಾ ಪರಿಚಯ ಇಸ್ ತರ ಸೆ ಹೇ, ದಿಲ್ಲಿ ಸೆ ಆಪ್ಕೋ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ, ಸನ್ 2000 ಸೆ ಮಧುಬನ್ ಮೇ ಸೇವಾಯ ದೇ ರಹೆ ಹೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಪಾಂಡವ ಭವನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇ ಸೇವಾಯ ದಿ ಹೇ ಔರ್ ದೇ ರಹೆ ಹೇ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ಮನಿ ದಾದಿಜಿ ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಅಂಗ ಸಂಗ ರಹನೆ ಕಾ ಔರ್ ದಾದಿ ಕಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ. ಮಹಿಳಾ ವಿಂಗ್ ಕಿ ಆಪ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಹೇ, ದೇಶ ವಿದೇಶ ಮೇ ಅಪ್ನಿ ಸೇವಾಯ ದೇಕರ್ ಲಾಖೋ ಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಆತ್ಮಾಓಂ ಕೋ ಬಾಬಾ ಕಾ ಪರಿಚಯ ದೇಕರ್ ಲಾಭಾನ್ವಿತ ಕಿಯಾ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತಥಾ ಶಿಬಿರ ಮೇ ಸೇವಾಯ ದೇತೆ ರಹತೆ ಹೇ ಔರ್ ಹಜಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಂ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಮಿಠಿ ವಾಣಿ ಸೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರಾಕರ್ ಲಾಭಾನ್ವಿತ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ತೋ ಬಹುತ್ ಅವಶ್ಯಕ ವಿಷಯ ಹೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಕೆ ಕದಮ ಪರ್ ಕದಮ ರಕ್ಕರ್ ಕೈಸೆ ಚಲೆ. ತೋ ಮೈ ಸನ್ಮಾನನೀಯ ದೀದಿ ಜಿ ಸೆ ನಮ್ರ ನಿವೇದನ್ ಕರ್ತಿ ಹೂ, ಆಪ್ ಹಮೇ ಲಾಭಾನ್ವಿತ ಕರೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪೀಠೆ ಜೊ ಬೈಠೆ ಹೇ ಬಹುತ್ ಇಸ್ ತರ ಬಹುತ್ ಪೀಠೆ ಪೀಠೆ ಬೈಠೆ ಭಾಯಿ ಆಗೇ ಆ ಜಾಯೆ, ಮಾತಾ ಭೀ ಆಗೇ ಆಗೇ ಆ ಜಾಯೆ, ಆಗೇ ಇಸ್ ತರಫ್ ಸೆ ಸೋಫೆ ಖಾಲಿ ಪಡೆ ಹೇ, ಮಾತಾ ಆ ಜಾಯೆ ಆಗೇ ಆಗೇ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಭರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೇ.
ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಪ್ ಸಭೀ ಕೋ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ತೋ ನಯೆ ಸಾಲ್ ಕಿ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಬಧಾಯಿ ಹೇ, ಬಧಾಯಿ ಹೇ, ಶುಭಕಾಮನಾಯೆ. ಔರ್ ಬಾಬಾ ನೆ ಕಲ್ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಪ್ರೇರಣಾಯೆ ದಿ ಕಿ ಹಮೇ ನಯಾ ಸಾಲ್ ಕೈಸೆ ಮನಾನಾ ಹೇ. ಹಮಾರೇ ಲಿಯೆ ತೋ ಕೋಯಿ ಏಕ್ ದಿನ ನಯಾ ನಹೀ ಹೇ, ಹರ್ ದಿನ ಹೀ ನಯಾ ಉಮಂಗ್ ಹೇ, ನಯಾ ಉತ್ಸಾಹ ಹೇ, ನಯಾ ಜೋಶ್ ಹೇ. ಯೇ ಹಮಾರಿ ನವ ಜೀವನ್ ಹೇ ಜೋ ನವ ಯುಗ್ ಕೋ ಲಾನೆ ವಾಲಿ ಹೇ. ತೋ ಹಮಾರೇ ಲಿಯೆ ತೋ ಬಾಬಾ ಜೋ ರಾಜ ಸಮಝಾತೆ ಹೇ ವೋ ರಾಜ ಹೀ ಬಹುತ್ ಅದ್ಭುತ ಹೇ, ನಿಯಾರೇ ಹೇ. ಹಮ್ ಸಬ್ ಕಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೇ ಬಾಬಾ ಕೆ ಸಮಾನ್ ಬನೆ. ಜೈಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ನೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥಾ ಕೋ ಪಾಯಾ, ಜೈಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಸಂಪನ್ನ ಬನೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬನೆ, ಐಸೆ ಹಮ್ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಭೀ ಬನನಾ ಹೇ. ಜೈಸೆ ಬಾಬಾ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬನೆ, ಐಸೆ ಹಮೇ ಭೀ ಬನನಾ ಹೇ. ತೋ ಉಸ್ಕಿ ಸಹಜ ವಿಧಿ ಬಾಬಾ ಕ್ಯಾ ಬತಾತೆ ಹೇ, ಸಹಜ ವಿಧಿ ಹೇ ಜೋ ಬಾಬಾ ನೇ ಕದಮ ಉಠಾಯೆ, ಜೋ ಬಾಬಾ ನೇ ಬಾಬಾ ಕಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕಿಯಾ, ಜೈಸೆ ಬಾಬಾ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ರಹೆ ವೈಸೆ ಹಮ್ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಭೀ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಚಲನಾ ಹೇ. इसको बाबा कहते हैं फॉलो फादर करो। तो जो बाबा के संकल्प थे, जो बाबा के बोल थे, जो बाबा के कर्म थे, वही हमारे संकल्प बोल और कर्म भी हो। तो बाबा के संकल्प सदा कैसे रहे ना? कई बार हमें ये प्रश्न उठ सकता है कि हमने तो साकार बाबा को देखा नहीं, तो कैसे फॉलो करेंगे? जिसको देखा है, जिससे स्नेह है, उसको फॉलो करना सहज होता है। तो क्या कहेंगे, बाबा को देखा है नहीं देखा है? आप में से बहुत होंगे जो अभी कुछ समय से ही ज्ञान में चल रहे होंगे, कुछ पुराने भी हैं बाबा के बच्चे, तो जो समझते हैं हमने बाबा को देखा है, साकार में नहीं देखा, लेकिन हमारी एक अंतर्दृष्टि भी है ना, अंतर चक्षु भी है, तो जो समझते हैं हमने बाबा को देखा है वो हाथ उठाओ। देखो मेजॉरिटी ने देखा है, कोई कोई है जो नहीं उठा रहे हैं। तो हम सब बाबा को दिल से जानते हैं ना? और बाबा के बारे में हम अपनी दादियों से मुरलियों में कितना बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बताते हैं, बाबा खुद के बारे में भी खुद भी बताते हैं, खुद के अनुभव भी बताते हैं, और अव्यक्त मुरलियों में भी हम सुनते रहे हैं। तो हम बाबा के मन वचन कर्म को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो बाबा के संकल्प कैसे थे? सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना वाले, सदा हर आत्मा विशेष बने और उनके प्रति वो उमंग उत्साह में लाने के संकल्प बाबा के रहे। कोई भी आत्मा थी, कैसी भी आत्मा बाबा के सामने आई, और बाबा के बोल कैसे थे? बाबा के बोल सदा ही मधुर, अनमोल और युक्ति युक्त थे, जिन्हें हम वरदानी बोल कहते हैं। बाबा ने जिसको जो कहा वो उसके लिए सत्य हो गया, भले उस समय उसको समझ में नहीं आया कि बाबा ने मुझे ऐसा कहा ना। होता है, हम पहली बार मिल रहे हैं, हमें इतने ज्ञान की समझ नहीं है, या बच्चे हैं उस समय, जैसे दादियां सुनाती थी कि हम बच्चे थे और बाबा हमें ऐसा कहते थे, तो उस समय हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन भविष्य में वही बोल हमारे लिए सत्य हो गए ना। तो वो बोल में इतनी समर्थी थी। बाबा के बोल सदा ही हिम्मत बढ़ाने वाले, सदा उमंग उत्साह में लाने वाले, सेवा में सदा आगे बढ़ाने वाले, सदा आत्मा को सुख का अनुभव कराने वाले थे। तो क्या हमारे बोल ऐसे हैं? फॉलो करना है ना बाबा को। और सदा थे, मतलब ऐसे नहीं कि कभी थे और कभी नहीं थे, कभी गुस्से में आ गए तो जो आया वो बोल दिया, और कभी बाबा की स्मृति है, याद है, तो फिर अच्छे अच्छे मीठे शब्द बोले। तो हम ऐसा तो नहीं करते। तो अगर हम कर जाते हैं कभी, है ना, कभी हमारे वचन कड़वे भी हो जाते हैं, ऐसे ज्ञान में आने के बाद तो बहुत सुधार होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी माया का प्रभाव आ गया और हमारे मुख से ऐसे वचन निकल गए, तो इसका मतलब अभी हम बाबा को फॉलो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी वचन दुख देने वाले, किसी का अपमान करने वाले, किसी को नीचा दिखाने वाले ना हो। फिर बाबा के कर्म कैसे थे? सदा ऐसे कर्म जो सुखदाई थे, यानी बाबा ने हमेशा लक्ष्य रखा, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे। तो बाबा ने हर कर्म खुद करके सिखाया, ऐसे नहीं सिर्फ कहा, लेकिन हर छोटा बड़ा काम बाबा ने किया। बच्चों के साथ हम सुनते हैं ना, बाबा अनाज भी साफ करते थे, बाबा सब्जी भी काटते थे, उन दिनों में गैस नहीं होती थी तो गोबर के गोले अंगीठी जलती थी, ना उसके लिए वो भी बाबा ने बच्चों के साथ बनाए। तो सोच सकते हैं ना, इतनी बड़ी अथॉरिटी और कोई इतने छोटे छोटे काम करे ना, तो कभी देह अभिमान आ सकता है। लेकिन बाबा ने बच्चों के साथ सदा निर्माणता से उनको कर्म करके सिखाया। लेकिन स्थिति सदा श्रेष्ठ रही, ऐसे नहीं कि कर्म साधारण है तो स्थिति भी साधारण हो गई। हम भी ये सब काम करते हैं, अपने घर में हम सफाई भी करेंगे तो कपड़े भी धोएंगे, जो भी खाना भी बनाएंगे, तो देखने में तो साधारण कर्म है, लेकिन स्थिति कैसी होनी चाहिए? जैसे बाबा की हर कर्म करते ऊंची स्थिति रही, श्रेष्ठ स्थिति रही, स्वमान की स्थिति रही, कभी भी अपने स्वमान से नीचे नहीं आए। उस समय भी कोई बाबा को आके मिलता था तो अनुभव होता था उसे, वो कर्म करते हुए भी। तो ऐसे ही भले ही देखने में हम साधारण कर्म कर रहे हैं, लेकिन देखने वाले को लगे कि ये कितनी महान आत्मा है और ये कर रही है, लेकिन हमको देह अभिमान नहीं आए कि हम ब्रह्मा कुमारी में आए, ज्ञान में चले, क्योंकि सेवाएं तो सभी प्रकार की होती है ना, ऑलराउंड सेवा हम बाबा के बच्चे करते हैं। तो हो सकता है आप लौकिक में ऑफिसर होंगे, कोई ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, जो भी, और जब सेवा मिलती है, कोई भी सेवा का कार्य होता है, प्रोग्राम होता है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे लेवल की ही सेवा हो, होती है तो कोशिश करते हैं जो निमित है वो आपको उसी प्रकार की सेवा दें, पर कई बार नहीं होता है। तो फिर जो भी सेवा हमें मिले, तो अगर ये संकल्प चले क्या ये सेवा हमें करनी है, हम इस सेवा के काबिल हैं ना, तो ऐसा संकल्प अगर चलेगा तो वो सेवा हमारी सफल नहीं होगी। अब यहाँ यज्ञ में भी हम सेवा करते हैं आकर के, तो सब सेवाएं कैसी हैं? तो सभी सेवाएं स्थूल सेवाएं हैं, सब्जी काटना है, अनाज साफ करना है, या जो भी ना आपको सेवाएं मिलती हैं वो स्थूल सेवाएं होती हैं। लेकिन किस स्थिति से करनी है, तो उसी निमित्त भाव से जैसे बाबा ने करके दिखाया, श्रेष्ठ स्थिति में हमें वो सेवाएं करनी है। फिर बाबा के सामने यज्ञ में जो बाबा ने इशारा दिया, जैसे ही बाबा को निश्चय हुआ कि ये शिव बाबा की प्रविष्टा है और शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए हैं, बाबा का इशारा मिला और शिव बाबा के सामने बाबा ने सर्वंश समर्पित किया, सर्वस्व अर्पण किया, अपना तन मन धन संबंध सब कुछ। तो जरा भी उसमें क्वेश्चन नहीं कि ये क्या, ये क्यों, और फिर भविष्य भी कोई निश्चित नहीं था उस समय। हमारे सामने तो सब कुछ बहुत स्पष्ट है, अभी अनेक उदाहरण है हमारे सामने, तो जिनकी जीवन परिवर्तन हो गई, जिनकी जीवन श्रेष्ठ बनी है, अब तो हमारी अनेक जो आदि रतन है कर्मातीत भी बन चुके हैं, लेकिन बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। लेकिन सिर्फ एक शिव बाबा पर अटूट निश्चय और बाबा के श्रीमत के आधार पर सब कुछ समर्पण किया, तन बाबा को दिया, मन को मन मना भाव बनाया और सिद्धि स्वरूप बने, धन को ईश्वरीय सेवा में ट्रस्ट बनाकर लगाया, अपने नाम से नहीं, बहनों के नाम से ट्रस्ट बनाया, तभी नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अपने बेटों को भी नहीं दिया बाबा ने, और ये भी नहीं कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, भविष्य की चिंता होती है ना, जब धन की बात आती है तो भविष्य के लिए कुछ तो चाहिए ही होना चाहिए, बाबा ने ये भी नहीं सोचा। तो धन को समर्पित करने के समय बाबा ने ये सोचा कि ये देना नहीं है लेकिन पदम गुना लेना है। हमें पता है ना कि जो भी हम बाबा के यज्ञ में सहयोग करते हैं वो हमें कितना मिलने वाला है, सतयुग में त्रेता युग में हम क्या बनने वाले हैं उससे। तो हम तो क्या करते हैं सुदामा के चावल जैसा, है ना। तो वो प्राप्ति को बाबा ने देखा और संबंधों को भी, जो लौकिक संबंध थे उन संबंधों को भी परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं, क्योंकि बाबा भी तो प्रवृत्ति वाले थे ना? तो बाबा ने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया, उनके प्रति अपनी वृत्ति और भाव को बदला। जो वृत्ति थी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, नहीं, आत्मिक रूप से क्या है, आत्मिक रूप से सब बाबा के बच्चे, मेरे भाई भाई हैं। और इसी कारण उनकी वृत्ति भी बाबा के प्रति बदल गई, उनको भी बाबा से क्या साक्षात्कार हुए, जैसे और सबको होते रहे बाबा से साक्षात्कार। तो चाहे यशोदा माँ थी, उनकी भी भावना अपने पति के प्रति बदल गई ना, वो भी फिर उनको पति रूप में नहीं देखते थे, जैसे और सब बाबा को देखते थे, ऐसे ही शिव बाबा के रथ हैं, हमारे बाबा हैं। चाहे वो बहू थी, चाहे वो बेटी थी, सबकी भाव भावना बाबा के प्रति चेंज हुई और यज्ञ में स्वाहा हुए, समर्पित हो गए। तो बाबा ने ये परिवर्तन लाया अपने अंदर जो समर्पण किया। तो हम अपने आप को देखें, ऐसे अब हम सब भी लौकिक संबंधों में रहते हैं, तो लौकिक संबंधों में रहते हुए क्या हमने अपनी वृत्ति और भाव को परिवर्तन किया है। हाँ, तन मन धन बाबा कहते हैं क्या करो, तेरा कह दो, समर्पण करना माना भाव बदलना है ना। जो भी यहाँ है उसे यूज तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे यूज करना है, मेरा नहीं है लेकिन किसका है सब कुछ, बाबा का है ना, बाबा ने दिया, हम ट्रस्टी हैं। तो जो मैंपन और मेरेपन की बुद्धि है, जैसे बाबा ने उसका त्याग किया, ऐसे ही हम बच्चों को भी वो त्याग करना है। और संबंधों में ऐसे नहीं है कि जिन संबंधों में हम रहते हैं है ना, उसको उसी तरह से व्यवहार में नहीं आना है, नहीं। अब जैसे दुनिया वाले भी कहते हैं ना कि ये तो पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं, तो भाई बहन ये हमारी एक समझ है। हाँ, ऐसे नहीं है कि कोई घर व्यवहार में जब हम हैं तो कोई हम भाई बहन बनकर चल रहे हैं, लेकिन अंदर की जो हमारी स्मृति है वो ये है कि हम आत्मिक रूप में इस संबंध से हैं। तो वृत्ति का परिवर्तन हमने किया व्यवहार में, तो दुनिया में जैसा व्यवहार हमें करना है, हाँ, या आपस में ऐसे एड्रेस भी करना हम शुरू कर दे, ऐसा भी हमें नहीं करना है कि अब सास बहू का संबंध है तो परिवार में वो कैसे दिखाई देगा, सास बहू का ही दिखाई देगा। लेकिन अंदर की स्मृति क्या है कि मेरी सास नहीं कौन है, या ये मेरी बहू नहीं कौन है, आत्मा है और बाबा की बच्ची है। तो जो उस तरह का व्यवहार चलता है, व्यवहार की बजाय वो परमार्थ हो जाएगा, वो परिवर्तन हम भी और वो सामने वाले की भी वृत्ति को वो परिवर्तन करेगा। तो ये परिवर्तन हमें बाबा ने सिखाया जो हमें फॉलो करना है। बाबा ने खुद करके दिखाया ना अपने जीवन में, वो भी तो प्रवृत्ति वाले थे, बाबा भी तो प्रवृत्ति वाले थे। और बाबा के सामने यज्ञ स्थापना के समय जो भी विघ्न आए, छोटे बड़े कई प्रकार के विघ्न आए यज्ञ में, हम सब जानते हैं, बाबा अपने लौकिक जीवन में बहुत रिस्पेक्टेबल थे, सब बहुत सम्मान करते थे बाबा का, क्योंकि बाबा एक तो ज्वेलर थे, प्रसिद्ध ज्वेलर थे, और उसके साथ साथ उनका जो व्यवहार था वो सबके साथ बहुत अच्छा और सात्विक था, जीवन उनका सात्विक था, तो सभी उनसे स्नेह भी करते थे। लेकिन जब शिव बाबा की प्रविष्टता हुई तो सब उल्टा हो गया। जितना लौकिक जीवन में सबके स्नेही रहे, उतना अलौकिक जीवन में सबने उनको दुश्मन के जैसा व्यवहार किया, यानी उतनी ही उनको गालियां खानी पड़ी, उतने ही अपशब्द बाबा को सुनने पड़े, यहां तक कि कलंक भी बाबा के ऊपर लगे। लेकिन फिर भी बाबा ने ये सब होते हुए भी उसको मुस्कुराते हुए पार किया, कभी भी मुरझाए नहीं। और उसका आधार क्या रहा? बाबा पर अटूट निश्चय। तो ऐसे ही पेपर तो हमारे सामने भी आते हैं, जैसे कहते हैं सहनशीलता क्या है, कोई आपकी प्रशंसा करता है और आप मुस्कुराते हैं, वो सहनशीलता तो नहीं कही जाएगी। सहनशीलता हम कब कहेंगे कि कोई आप पर क्रोधित होकर के ऐसे ऐसी बातें कहे जो गलत हो और फिर भी आप मुस्कुराओ, तो ऐसा हम कर सकते हैं ना। घर परिवार में होता है ना, हम ज्ञान में आते हैं और ज्ञान में नहीं चलते, वो दो चार बातें ऐसी सुनाते हैं आपको, अब आपको पता है कि भाई ये इनकी गलत फहमी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों के बारे में कुछ गलत सुना हो, वो भी सकता है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग पता नहीं क्या क्या सुन लेते हैं उल्टी सीधी बातें, और फिर जैसे ही उनको पता चला आप वहां जा रहे हो तो वो आपको अच्छी तरह से वो सब मानो सुनाते हैं। तो फिर अगर हम भी उन्हीं की तरह उन्हीं की भाषा में उसी जोश से उनको जवाब देते हैं, तो फिर इसका मतलब हमारे अंदर वो सहनशीलता तो नहीं रही जैसे बाबा ने किया। तो कोई कैसा भी करे, लेकिन मुझे कैसे रहना है? सदा शांत रहकर रहम दिल बनकर उस आत्मा के प्रति कल्याण की भावना ही रखनी है। बाद में वो अपने आप, आज भी जैसे यज्ञ के उस समय जिन्होंने भी गालियां दी, बाद में उन्होंने रियलाइज किया इस बात को, है ना, तो वो अपने आप फिर बाद में रियलाइज करते हैं। बाबा ने कभी भी बड़ी बात को छोटा बनाया, छोटी बात को बड़ा नहीं बनाया। कई लोगों की आदत होती है कि बात छोटी सी होती है, जिसको कितने राई को पहाड़ बना देते हैं, क्योंकि वो क्यों क्या में चले जाते हैं। लेकिन बाबा कभी भी विस्तार में नहीं गए। जैसे हम सुनते हैं कि यज्ञ में बेगरी पार्ट भी चला, है ना, कई प्रकार के विघ्न आए ये यज्ञ की स्थापना के समय, फिर उसके बाद जब भारत में सेवाएं शुरू हुई तो भी ऐसे अनेक विघ्न बाबा के सामने आते रहे। तो जब बेगरी पार्ट चला यज्ञ में, उस समय ये स्थिति होती थी कि खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो निश्चित नहीं होता था। तो कोई यज्ञ सेवा के निमित्त कोई बन करके आ गया तो फिर वो खाना होता था। तो भी बाबा कभी प्रश्नों में नहीं गए, यानी विस्तार में नहीं गए कि अब क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं अब भविष्य में कैसे चलेगा, ऐसे प्रश्न बाबा ने कभी नहीं चलाए। बाबा हमेशा यही सोचते थे कि बाबा जिम्मेवार है, ये यज्ञ बाबा का है और मैं भी बाबा का हूँ, बच्चे भी बाबा के हैं। तो सदा ही इस आधार पर बेफिक्र बादशाह और निश्चिंत रहे कि बाबा की जिम्मेवारी है खिलाने की, बाबा खिलाएगा तो खाएगा, खाएंगे और नहीं तो ठीक है, दुनिया में भी लोग व्रत रख लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाबा ने नहीं खिलाया हो, हमेशा निश्चय की विजय हुई कि बाबा पर निश्चय रख निश्चिंत रहे। तो एक बार ऐसे ही, ऐसे तो कई मिसाल हैं, पर एक मिसाल है कि ऑलमाइटी बाबा, शिव बाबा को उस समय ऑलमाइटी बाबा कहते थे, और जो संदेशियां उस समय में संदेशियां बहुत थी, संदेशियों का पाठ चलता था ज्यादा, तो वो संदेश के द्वारा संदेश आया, होली आने वाली थी, एक दो दिन बाद ही होली थी, तो बाबा से संदेश आया कि बच्चों को होली पर जलेबी खिलानी है। तो जलेबी खिलानी है, ठीक है, बाबा की आज्ञा है, ऊपर से आया है संदेश, तो जरूर जलेबी खिलानी है। तो बाबा ने भंडारी को बुलाया, तो उसने कहा बाबा जलेबी कैसे बनेगी, क्योंकि 350 लोग रहते थे यज्ञ में, तो जलेबी के लिए सामान तो है ही नहीं। तो बाबा ने कहा, बाबा ने कहा है तो बाबा ठीक है, कोई ना कोई प्रबंध करेगा। और उस समय माउंट में एक सिंधी परिवार रहता था, ऐसे तो कई हैं, लेकिन जो जानते हैं ओम मंडली के टाइम से वो जानते थे बाबा को। फिर यहाँ पर पार्टीशन के बाद जैसे शिफ्ट हुए, तो वो जो माता थी उनको बहुत भावना थी बाबा में, और वो बहुत बार अपने पति को कहती थी कि मुझे यहाँ जाना है, ओम मंडली में जाना है और कुछ देकर आना है। तो उनका पति कट्टर एंटी, जैसे ओम मंडली के टाइम से ही जो एंटी पार्टी बनी थी उसी हिसाब से उनके भी दिमाग में वही बातें थी। तो उसने कहा कि अगर तुमको दान देना है तो बहुत साधु यहाँ रहते हैं, आप देकर आओ, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाना है। तो लेकिन उसकी भावना थी। और हुआ ये कि उस दिन रात को जब वो लोग सो रहे थे, क्योंकि शायद ब्रज कोठी में रहते थे उस समय, जो अपना यज्ञ था ब्रज कोठी में था, और अमृत वेले तो उठते ही हैं बाबा, तो 2 बजे से उठते थे और बाकी 4 बजे से लाइट जलती थी। तो उनके पति को बाबा ने कुछ टच किया रात के समय नींद में, तो उसकी जब नींद खुली तो उसने झांक के देखा, तो देखा लाइट जल रही है ना, रेड लाइट जो जलती है योग के समय। तो उसने अपनी पत्नी को उठाया और कहा कि तुम मेरे को कहती थी ना मुझे जाना है, कुछ देना है, तो तुम देकर आओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चली जाऊंगी दिन में। तो उसने कहा नहीं, दिन में नहीं, अभी जाओ। तो बोला अभी क्यों, सुबह सुबह? तो बोला नहीं, फिर कहीं मेरा मन ना बदल जाए, तुम अभी जाकर देकर आओ, तुमको जितना देना है तुम पैसा ले जाओ और अभी देकर आओ। तो बाबा तो बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, तो बाबा किसको टच करके अपना काम कर लेता है। और वो अमृत वेले ही गई, और बहनों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये माता सुबह सुबह कहाँ आई है। और फिर उसने अपना बताया कि मैं क्यों आई हूँ, और मेरे पति ने भेजा है, और फिर वो पैसा मिला और उससे सारा जलेबी का सामान आया और सबने जलेबी होली पर खाई। तो ये बाबा का कार्य है ना? लेकिन निश्चय की परीक्षा कई बार थोड़ी सी होती है, और अगर हम निश्चय से संशय में आ जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां आती ही क्यों है, परिस्थितियां क्यों आती है, हमारे पेपर है ना परिस्थितियां, तो वो पेपर से पता चलता है कि पढ़ाई कितनी है हमारी, निश्चय कितना है हमारा, और उसमें हम कितना पास हो सकते हैं, उसी आधार पर ही तो हमारे मार्क्स मिलते हैं। तो अगर हम अचल अटल अडोल रहते हैं ना, अगर बाबा पर अटूट निश्चय है तो हम हिलेंगे नहीं, पता है बाबा बैठा है ना, हमारा एक चित्र भी बना हुआ है ना, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं। तो जब बाबा बैठा है तो फिर वो तो होना ही है। तो इसीलिए कहा निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो बाबा कभी भी स्वप्न मात्र भी संशय में नहीं आए, शिव बाबा के महावाक्यों पर बाबा को अटूट निश्चय रहा। तो ऐसे ही हमें भी एक बल एक भरोसे के आधार पर कभी भी संशय में नहीं आना, कितनी भी हिलाने वाली बातें आए, बातें तो क्या, लोग भी आ सकते हैं आपको हिलाने के लिए है ना, लेकिन कभी भी हम हिले नहीं। फिर बाबा को हम देखते थे कि बाबा का मुरली से बहुत प्यार, जैसे कहा मुरली से प्यार माना मुरलीधर, बाबा तो मास्टर मुरलीधर थे, बाबा के द्वारा ही मुरली चलती थी। लेकिन अमृत वेले खास उठ करके बाबा मुरली का अभ्यास करते थे खुद, और बच्चों के लिए लिखते थे बाबा मुरली। और जैसे टेप वगैरह की भी बात आती है मुरली में, तो जब जैसे ही वो साधन आने लगे तो बाबा जो है वो कोशिश करते थे कि सब बच्चों तक मुरली वैसी की वैसी पहुंचे जैसे बाबा की मुरली चलती है। और इसीलिए लास्ट दिन तक भी बाबा ने मुरली चलाई, 18 जनवरी को भी बाबा की मुरली चली। हालांकि बाबा की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे बाबा ने कहा कि बाबा ने जो खजाने बच्चों को दिए हैं, बच्चों के लिए दिए हैं, वो सर्व खजाने बाबा ने लास्ट तक सफल किए। वो समय भी बाबा ने सफल किया, जो समय का खजाना है, कभी भी अपने पुरुषार्थ में बाबा ने अलबेलापन नहीं आने दिया। चाहे जो भी कारण रहा हो, बाबा की आयु कितनी थी, 60 वर्ष की उम्र में तो शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो पहले से ही वानप्रस्थ थी, उम्र तो हो गई, और 93 साल की उम्र, तो 93 साल की उम्र में तो शरीर का कितना हिसाब किताब होता है, हम सब जानते हैं कि वृद्ध आयु शुरू होते ही कभी कुछ कभी कुछ, तो कई बहाने बन सकते हैं ना, आज ये है आज वो है, तो पुरुषार्थ में ढीलापन आ सकता है। आज भी ऐसा होता है ना, शरीर में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो हमारा पुरुषार्थ थोड़ा ऊपर नीचे होने लग जाता है। लेकिन बाबा ने कभी भी अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं आने दी। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप है ना, जैसे आज नलिनी दीदी सुना रही थी मुरली के समय कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने वो विल पावर रखी तो बाबा की मदद मिल गई और आकर के सबसे मिले वो, है ना। तो ऐसे ही बाबा ने कभी भी अपने पुरुषार्थ की तीव्रता में कभी नहीं आने दी, लास्ट तक तीव्र पुरुषार्थी बनकर के रहे। तो हमें भी कोई बहानेबाजी नहीं करनी है अपने पुरुषार्थ में ना, सबसे पहले माया बहानेबाजी लेकर के आती है। बाबा कहता है बहानेबाजी नहीं लेकिन उड़ती कला की बाजी हो हमारी, तीव्र पुरुषार्थ माना उड़ती कला की बाजी में जाना। और बाबा सदा ही वफादार बनकर के रहे, विश्व सेवाधारी बनकर के रहे। वफादार माना एक बाप दूसरा ना कोई। कभी भी संकल्प में भी स्वप्न में भी बाबा फिर मिसाल देते हैं कि जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो उसका यही एक धारणा होती है कि उसके स्वप्न में भी कोई दूसरा ना आए। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने कभी भी बाबा के सिवाय किसी को भी आधार नहीं बनाया, और एक बल एक भरोसे के आधार पर कितने भी जो भी तूफान आए उन सब तूफानों में वो विजयी बने। और सेवाधारी स्वरूप जो था बाबा का, उसमें सदा ही सत्यता की निर्भयता से ज्ञान को दुनिया के सामने स्पष्ट किया। सत्य ज्ञान सुनाने में कभी पीछे नहीं हटे। कितनी बातें थी जिसका विरोध होता था, जैसे शुरू शुरू में सबने कहा कि बाबा ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन पवित्रता की बात मत करो, अगर आप ये बात हटा दोगे तो लाखों फॉलोवर्स होंगे आपके। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा मेरा ज्ञान नहीं है, शिव बाबा आया है और ये शिव बाबा ने जो ऑर्डिनेंस निकाला है मैं खुद भी उसी पर चल रहा हूं। तो कभी भी सत्य बात से पीछे बाबा नहीं हटे, चाहे कितना ही विरोध हुआ उसका, लेकिन निर्माणता भी उतनी रही, फिर महानता भी उतनी रही। सत्य बात को निर्माणता से कहा। आज हम मुरली सुनते हैं बाबा की, कई शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी कैसे लगते हैं उनमें हमारे लिए बाबा का स्नेह है, हमारे ही भले के लिए, कल्याण के लिए बाबा कह रहा है। कभी वो शब्द बुरे लगते हैं, हाँ, किसी को बुरे लगते हैं, कोई और कह दे तो हम कभी भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बाबा के शब्दों में जितनी अथॉरिटी है उतना ही बाबा का प्यार, उतना ही वो निर्माणता उसमें है, तो हम उसे सहज उसे स्वीकार करते हैं। तो यही बाबा हमसे सेवा में चाहते हैं, जो कल भी बाबा ने मुरली में कहा, निमित्त, निर्माण और निर्माण। तो जब हम निमित्त होकर के निर्माणता से सेवा करते हैं, तब जाकर के वो सेवा हमारी सफल होती, कम सेवा में ज्यादा सफलता का वो हम अनुभव करते हैं। और बाबा ने सदा ही स्वयं को अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहलाया, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। थी तो बड़ी अथॉरिटी बाबा, तो उसका नशा रख सकते थे, लेकिन बाबा ने कभी भी वो नशा नहीं दिखाया अपना, वो रौब नहीं दिखाया, लेकिन सदा क्या कहलाया, मैं बच्चों का आज्ञाकारी सेवाधारी हूं। और हमेशा बच्चों को पहले आप किया, बाबा की धारणाओं में हम देखते हैं ना, हमेशा बच्चों के लिए कहते थे, बच्चे सेवा में मेरे से होशियार हैं, बच्चे मेरे से तीखे हैं, मम्मा मेरे से अच्छा भाषण करती है, मेरे से अच्छा क्लास कराती है। और जैसे सबको आगे रखा बाबा ने, बाबा कहते हैं वो कभी बाबा पीछे रहे, बाबा ही नंबर वन बने, लेकिन सेवा में हमेशा बच्चों को ही भेजा बाबा ने। अधिकतर बाबा तो खुद कभी विदेश भी नहीं गए, किनको भेजा विदेश, हम सुनते ना, जापान में जब पहली बार गए तो हमारी दादियां, दादी रतन मोहिनी, दादी प्रकाशमणि और साथ में भाई थे, आनंद किशोर दादा थे, उनको भेजा बाबा ने प्रतिनिधि बना करके। तो हालांकि उस समय विद्यालय के एक संस्थापक के रूप में बाबा खुद जा सकते थे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि दूसरों को आगे बढ़ाना पीछे होना नहीं, लेकिन आगे बढ़ाना माना खुद आगे होना है। तो पहले मैं नहीं, हाँ पहले मैं बाबा ने किया, लेकिन कब किया, खुद के पुरुषार्थ के लिए पहले मैं किया, जैसे कहा ना, जैसा कर्म मैं करूंगा, तो पहले मुझे करके दिखाना है। अमृत वेले से रात तक जो बाबा ने दिनचर्या दी, उस दिनचर्या में बाबा विधि पूर्वक चले, तो खुद करके दिखाया। जैसे कहा, कभी भी पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं रहा ना? तो बाबा ने वो पुरुषार्थ में पहले मैं करके दिखाया, और सेवा में, कोई नाम में, कोई शान में, सम्मान में, सदा बच्चों को आगे कर दिया। तो क्रेडिट किसको दिया, हमेशा बच्चों को दिया, इनके कारण ये करते हैं। हरेक की विशेषता को देखा, जो बच्चे बाबा से मिलते थे तो बच्चों को बाबा बच्चों जैसे बनकर के बहला लेते थे, कोई यूथ बाबा से मिलते थे तो बाबा उनके साथ फ्रेंड बन जाते थे, हम सुनते हैं बाबा खेलते भी थे सबके साथ, अलग अलग गेम्स बाबा खेलते थे, है ना, बैडमिंटन खेलते थे, वो चौपड़ खेलते थे, कभी ताश भी खेलते थे। और जो बुजुर्ग मिलते थे बाबा को, उनके साथ बुजुर्ग बनकर के, कि मेरे ही समान अनुभवी आत्माएं हैं, उनका वो उत्साह बढ़ाते थे इस तरह से। तो हरेक को अपनापन महसूस कराया, हरेक ये फील करता था कि बाबा मेरा है, किसी को ऐसा नहीं लगा कि इसका तो बाबा है लेकिन मेरा मेरा नहीं, इसको तो बाबा बहुत प्यार करता है लेकिन मुझे तो नहीं करता है, ऐसा लगता है किसी को, सबको क्या लगता है, अभी भी साकार बाबा से तो लगता ही था, लेकिन अभी भी बाबा अव्यक्त रूप में भी जो पालना हम बच्चों को दे रहे हैं, कैसा लगता है? बाबा मेरा है या तेरा है? हाँ, जो समझते हैं बाबा मेरा है वो हाथ उठाएं। देखो, सभी का बाबा है। तो बाबा ने क्योंकि बेहद की दृष्टि रखी सदा ही, कभी हद का तेरा मेरा नहीं किया बाबा ने, और इसके कारण ही सदा ही हर आत्मा को बाबा से ये फीलिंग आई। जैसे हमारी दादियों से भी हमेशा सबको क्या फीलिंग आती थी, हम सब दादियों से भी मिलते रहे, चलो बाबा से तो नहीं मिले साकार में, लेकिन दादियों से मिलते रहे तो क्या फील करते हैं। सबकी है दादी, कोई इसकी है या मेरी है नहीं, लेकिन सबकी दादी है। तो हमसे भी, हम जिन भी आत्माओं के संपर्क में आए ना, हमको फॉलो करना है ना बाबा को, तो हर एक को ये फीलिंग आए कि हाँ ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, यानी उनके प्रति इतनी हमारी स्नेह और शुभ भावना हो या देने की भावना। मुख्य रूप से जैसे कल बाबा ने कहा, दाता के बच्चे बनकर मास्टर दाता हमको बनना है। आज विश्व की आत्माएं किस स्थिति में हैं, वो पुकार रही हैं, तो बाबा ने भी सदा जो मनसा सेवा की विश्व की आत्माओं की, बाबा अमृत वेले उठकर के, मम्मा बाबा दोनों ही खास 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद उठकर के पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश देते थे नियमित रूप से। बच्चों को भी, किसी को भी सहयोग की जरूरत है, बाबा वो करते थे। और बाबा ने अशरीरी स्थिति का अभ्यास भी अटेंशन रखकर किया, मेहनत की उसके ऊपर, क्योंकि हमारे 63 जन्मों के देह अभिमान के संस्कार है ना, तो इतनी जल्दी हम आत्म अभिमानी नहीं बन पाते। तो हम सब जानते हैं बाबा ने कैसे मेहनत की, लिख लिख करके वो प्रैक्टिस किया बाबा ने ना। तो ऐसे ही हमें भी रोज विश्व की आत्माओं को तो आज ज्यादा जरूरत है ना। आज कितनी जगह युद्ध चल रहे हैं, अचानक कितनी आपदाएं आ जाती हैं, जो आत्माएं दुखी होती हैं, पुकारती हैं भगवान को रहम के लिए, तो कौन है उनके राइट हैंड बनकर के, कौन वो कार्य कर रहा है? बाबा ने कहा ना कल, कौन है राइट हैंड? हम किसके राइट हैंड है? बाबा की भुजाएं हैं ना। तो ये हमारा कर्तव्य है कि बाबा के साथ हम पूरी तरह से सहयोगी बनकर विश्व की आत्माओं को शांति दे, शक्ति दे, जो भी उन्हें चाहिए, खुशी चाहिए, संतुष्टता चाहिए, वो सब गुणों का दान, शक्तियों का दान हम उन आत्माओं को करें। तो रोज अमृत वेले नियम से, फिर शाम को भी, नुमा शाम के समय भी हम कुछ समय निकाल करके ये अभ्यास करें, और अपनी अशरीरी स्थिति बनाने का, क्योंकि शिव बाबा के समान भी हमको बनना है। शिव बाबा निराकार हैं, तो ब्रह्मा बाप के समान तो उनके संकल्प बोल कर्मों को हमें फॉलो करना है, लेकिन शिव बाबा तो विदेही हैं, तो बाबा के समान विदेही बनकर परम धाम में, खुद भी मुक्ति धाम में घर जाने के लिए तैयार होना है, और सबको भी मुक्ति धाम ले जाना है। वो कल बाबा ने हमको दिया ना होमवर्क कि सभी को मुक्ति धाम ले जाने के निमित्त कौन है, तो हमें ये मुक्ति धाम में भी आत्माओं को ले जाना है। तो ये हम पहले खुद अपनी स्थिति बनाएं, बीच बीच में समय निकाल करके हम ये विदेही स्थिति का भी अभ्यास करें कि मैं शरीर से न्यारी, इन कर्मेंद्रियों से न्यारी आत्मा हूँ, कर्म करने के लिए मैं इस शरीर का आधार लेती हूँ, हाँ, या मेरी फरिश्ता स्थिति, वो भी अव्यक्त स्थिति है, तो मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, फरिश्ता सो तभी हम देवता बनेंगे। तो जैसे बाबा से मिलते वक्त सब ये फील करते थे कि बाबा साकार में नहीं लेकिन अव्यक्त है, व्यक्त में मिलते हुए भी अव्यक्त भासना बाबा से मिलती थी, वो रूहानियत का अनुभव होता था, ऐसे ही हमारी भी वो स्थिति हमें बनानी है। और लास्ट बाबा ने जो अनुभव कराया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बाबा जो कर्म बंधन मुक्त बने। सेकंड में सब बच्चे सामने हैं बाबा के, जो भी अनन्य बच्चे थे, दादी जी थी और भी दादियां थी बाबा के सामने उस समय जब बाबा अपने कमरे में आए, तो कैसे सेकंड में पंछी उड़ जाता है ये अनुभूति की, कि बैठे बैठे ही दादी के हाथ में हाथ बाबा ने दिया और बाबा वतन में चले गए। कोई डायरेक्शन नहीं दिया किसी को कि ना, कभी संकल्प चल सकता है कि मेरा अंतिम समय पता तो चलता है, और इतनी महान आत्मा उसे पता ना चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन नहीं कि इतना बड़ा यज्ञ कौन संभालेगा, है ना, इनको मैं कुछ बता दूं या वो डायरेक्शन दे दूं, ये सब कोई याद आ जाए। जैसे बाबा कहते हैं ना, अंत समय में कई बातें याद आती हैं। लोग सोचते मेरा ये बेटा सामने हो, या ये मेरे जो भी जिनसे भी कनेक्शन होता है, इनको कोई चीज बतानी रह गई है। कुछ स्मृति में नहीं, सिर्फ कौन था? बाबा। और इसीलिए बाबा सहज इस शरीर से न्यारे होकर के वतन में चले गए। तो पता था कि ये शिव बाबा का कार्य है, मुझे इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। और आकर के शिव बाबा ने अपने आप फिर संभाल लिया। बाबा को जैसे यज्ञ चलाना है, जिसके द्वारा चलवाना है, वो अपने आप बाबा ने फिर निश्चित किया। तो बाबा ने ये प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया अपना, वो बनकर हमें दिखाया। तो यही हमारा अंतिम पेपर है कि लास्ट सेकंड हमें कुछ भी याद ना आए सिवाय बाबा के, ये कर लूं वो कर लूं, ये होता वो होता, कुछ नहीं। तो मोह का अंश मात्र भी प्रकट नहीं हुआ, यज्ञ से भी नहीं। इतना यज्ञ का विस्तार बाबा ने किया, इतना यज्ञ स्थापन किया, हाँ वो भी कोई संकल्प में खींचो बाबा को, वो भी नहीं। गए तो बिल्कुल एक सेकंड में बाबा अव्यक्त हुए। तो बाबा की ऐसे तो और भी बहुत सी धारणाएं हैं जो हमें अपने जीवन में फॉलो करते हुए बाबा के समान बनना है। लेकिन फिर भी अभी ये जनवरी मास है, अव्यक्त मास है, हर दिन हम एक भी बाबा की विशेषता को अपनी स्मृति में लाकर और उस सारा दिन अगर उसका अभ्यास करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ये पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। ओम शांति।
तेरी राहों पर चला करें हम। रहता पल भर ना भूले ओ, दिल कहता पल भर ना भूले इन पलकों में पला करे प्यार बाबा तेरी।